blessed Savior. Om Namah Sithevya. Om Namah Sithevya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Kammattajaniyaveyana. Uvahi Samuttinnaye Jinenamium. Veyana Mahahiyaram. विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी जो दसवीं पुस्तक है चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार की बात अपनी चल रही है। अब इसमें हम पृष्ठ संख्या 79 पर आ गए। 79 कल की जो बात हमने देखी थी टेबल की, उसको फिर दोबारा लेते हैं। देखो, हमने 76 पृष्ठ पर एक चार्ट देखा था, उसमें जीव स्थानों में जघन्य जीव स्थान से लेकर जघन्य योग स्थान, जीव स्थान नहीं, जघन्य योग स्थान किसमें, त्रस पर्याप्तों में, त्रस पर्याप्त जीवों के जो परिणाम योग स्थान है, हमने देखा उपपाद तो एक समय का है, एकांत अनुमृद्धि भी बढ़ते हुए है, और ये जो बाकी परिणाम योग स्थान है उसमें भी पर्याप्त जीव लेने, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जितने योग स्थान है उसमें वो जीव कितने हैं, उसकी अपेक्षा से ये जो चार्ट बनाया था, जिसको हमने जीव यव मध्य रचना कहा था। तो हमने मान लिए है जघन्य में 16 जीव है, बढ़ते बढ़ते बीच वाले किसी स्थान में 128 हो जाते और फिर आगे कम होते हैं, तो उत्कृष्ट जो है वो 5 तक आ गए उसमें। तो इसकी ये जो निषेक रचना टेबल के फॉर्म में बताई है, उसमें कल जो हमने गणित देखा था अवहार काल की प्ररूपना, अवहार काल ने वो जो भागाकार का प्रमाण है उसकी कुछ बात निकाली थी उन्होंने, तो उसका प्रमाण कैसा निकालना उसकी भी डिटेल में बात हुई थी, उसको दोबारा फिर देखते हैं। ये जो उदाहरण दिया है 77 पृष्ठ पर, इसको यव मध्य से करना है हमको। अपना प्रश्न क्या है कि जो संपूर्ण जीवों की संख्या है हमने 1422 मान ली है, उसको यवमध्य के प्रमाण से करना है। इसका अर्थ यवमध्य का प्रमाण 128 का एक यूनिट कहेंगे, उसको कहेंगे एक यवमध्य है। तो 1422 में कितने यवमध्य आते हैं, तो हमने देखा था कि 12 में थोड़ा कम इतने यवमध्य आते हैं, तो 12 के बदले उन्होंने गुणहानी की भाषा में बोला कि 4 की एक गुणहानी है, तो 3 गुणहानी में कुछ कम यवमध्य, आगे यवमध्य शब्द जोड़ देना, अकेला 3 गुणहानी कहेंगे तो 12 ही संख्या आती है, परंतु 12 यवमध्य कहना है ना आगे, क्योंकि एक यवमध्य की वैल्यू 128 है। तो अभी ये जो सारे ही योग स्थानों के जो जीव है इनकी हमको टोटल करनी है, तो जो कुछ कम नहीं, वो उसकी बात नहीं है, वो 12 में कुछ कम, 3 गुणहानी में कुछ कम, ये 3 यवमध्य में कुछ कम है ना, वो तो अभी हम आएंगे उस तरफ, अभी हम वहां नहीं आए। ये जो टेबल दिया है 76 पृष्ठ पर 16 से लेकर आगे की बात यही डिराइव करेंगे 79 पृष्ठ पर। अभी आगे वहां तक हम आए नहीं, अभी डिराइव कर रहे हैं। यहाँ जो तीन सवा तीन बात है वो यवमध्यों की है, गुणहानि की नहीं है। हमें 12 में कुछ यवमध्य इतनी रचना निकालनी है। देखिए ये जो 76 पेज पर जो टेबल दिया है उसमें 8 गुणहानि बतलाई है, सबकी टोटल अगर करेंगे तो 1422 आएगी। ये तो क्योंकि हमने इसी की तो संख्या निकालनी है, परंतु हमें यवमध्य के प्रमाण में उसको देखना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या है किया कि 128 यवमध्य है, तो उसकी दोनों ओर की टोटल की और उसमें कितने कितने यवमध्य आते हैं उसकी बात की उन्होंने। तो अभी जैसे दो प्रकार से बताया, दोनों ओर ये टेबल ऐसा है पुस्तक में। तो ये जो 128 है, 128 की जो यानी सेंटर वाली जो गुणहानि है उसकी डायरेक्ट हम टोटल करेंगे तो 416 आते हैं। अब उसी 128 को दोबारा लेना और इस तरह से यहाँ के तीन अंक लेना नीचे वाले तीसरे गुणहानि के जो 80, 96 और 112 लेना और वो 128 को दो बार लेना, दोनों तरफ लेना, तो उसकी भी टोटल 416 आती है। तो अकेले 416 को 128 के यूनिट में यानी यवमध्य कितने हैं 416 में है, 416 डिवाइडेड बाय 128 कितने आते हैं, 416 डिवाइडेड बाय 128 16 8 28 ऐसे 16 2 32 16 96 और फिर और इसको भाग दे गए बेचो काट और 13 13 चतुर्थांश 4 3 12 3 आ गए ना, 3 आ गए। ये हमने कल भी देखा था, ये तो बात आ गई यानी 3 यवमध्य इधर आए और यहाँ भी 3 यवमध्य आ गए। इतनी बात तो क्लियर हो गई। 128 की दोनों ओर की हमको टोटल करनी है। अब हम आगे वाली पहले देखेंगे फिर पीछे आएंगे ऊपर की गुणहानि। तो स्टार्टिंग में 64 56 48 और 40 इसकी टोटल होती 208, क्योंकि गुणहानि गुणहानि प्रति आधा आधा हो जाएगा। यानी अपना नंबर पांचवी गुणहानि कहो या ऊपर की पहली गुणहानि कहो, 208 उसके आगे की होगी 104 उसके आगे की होगी उसी आधा 52 और लास्ट है वो 26। अब इसकी भी टोटल हमको 416 करनी है। 208 और 104 होते हैं 312, 312 और 52 और 26 इस सब की टोटल हम करेंगे। हाँ तो 416 में कुछ कम है, तो 416 लाने के लिए 26 मिलाने पड़ेंगे एडिशनली, तभी हमको 416 मिलेंगे। और 26 ऐड करने पर ये 416 की टोटल होती है, तो ये भी 3 हो जाएंगे, 3 यवमध्य। वो ऐड की हुई बाद में निकाल लेंगे हम, ख्याल है ना। हाँ अब इस ओर देखते हैं 128 के नीचे की ओर, जैसे यहां हमने देखी थी ये इसे पेज नंबर 76 निकालना। अब इस बाजू भी देखते हैं तो 128 के नीचे की जो संख्या ऐसा उल्टा हम गिनेंगे 112 96 इसकी टोटल होती है 216 उसकी हमने देखी थी। उसके आगे वाली ऐसे भी उसको भी इसी तरह से लेना, 208 फिर पहले वाली 104 पर तो हमने 16 को छोड़ा था तो 16 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि सभी जीवों की टोटल निकालनी है। तो 16 को रखा हमने, 16 को रखते हुए अभी हमको 416 बनने के लिए 88 कम पड़ते हैं, तो हमने उसमें 88 मिला दिए। 88 मिलाने पर इसकी भी वैल्यू 3 हो जाती है। तो हमने एक्स्ट्रा क्या क्या मिलाया, यहाँ मिलाए 26 और यहाँ मिलाए 88 जिसकी टोटल होती है 114। यानी 114 एक्स्ट्रा मिलाकर सभी जीवों की टोटल कितनी हुई, हमारा यूनिट है 128 का, यानी इसको हम कहते हैं यवमध्य, 3.5 + 3.5 6.5 ये बाजू और 3.5 6.5 इस बाजू, तो 6.5 और 6.5 हो गए 13 यवमध्य रचना आई। 13 यवमध्य में नहीं, पहले 128 दोनों ओर लिए थे, इधर भी काउंट किए इधर भी काउंट किए, तो उसको एक बार माइनस करेंगे, तो 128 माइनस करने के लिए एक यवमध्य माइनस करेंगे, तो 12 आ गए, 12 यवमध्य आ गए, और उसमें हमने 114 एक्स्ट्रा मिलाए थे उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो 114 की वैल्यू यवमध्य में कितनी आती है, 128 का एक यवमध्य, तो 114 का कितने यवमध्य होंगे, तो 114 डिवाइड बाय 128, 2 का भाग देंगे, 5 × 10 × 7 = 14, 57/64, तो 57/64 माइनस करना है 12 में से, तो बाकी कितने हैं, 57 और 7 = 64 होते हैं ना, तो 11 में 7 = 64 मिला देंगे, तो अपने यवमध्य कितने रहेंगे, 12 यवमध्य में से यहाँ हमने 57/64 माइनस किए, तो वैल्यू कितनी आ गई, 11 पूर्ण हाँ और 7/64, यानी 11.7/64 यवमध्य, यह टोटल जीवों की संख्या आ गई, इतने यवमध्य, ने इसको 128 से गुणा करेंगे तो उसकी टोटल हो जाएगी ना यवमध्य, तो ये उसका अवहार काल आया। देखो यहाँ हमने ये फाइनल रिजल्ट देखा था पेज नंबर 79 पर, ये उदाहरण से हम फिर देखते हैं 78 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन देखो, 6.5 और 6.5 13 यवमध्य, ये ख्याल में है ना, अभी 6.5 कहां से निकाले उन्होंने, किंतु इनमें यवमध्य की संख्या 128 दो बार सम्मिलित हो गई, हमने दोनों ओर उसको काउंट किया था क्योंकि आसान पड़े इसलिए अपनी वैल्यू निकालने के लिए, तो 128 दो बार लिया, तो 128 को ही हमने यवमध्य कह दिया है, तो एक यवमध्य उसमें से माइनस करेंगे तो 13 के बदले अभी 12 यवमध्य रहेंगे, फिर भी यह स्थूल दृष्टि से परिगणना है, परिगणना यानी उसकी वैल्यू, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 114 संख्या कम होकर 11 से कुछ अधिक यवमध्य आते हैं, ख्याल है, कुछ अधिक में हमने 7/64 लिए थे अभी, अब इसकी हानि के विधान को कहते हैं, ये 12 में से कितना हानि करना है, कितना ऋण करना है, कितना घटाना है, उसको देखते हैं, यवमध्य अर्थात 128 अंक की अपेक्षा यदि एक रूप की हानि पाई जाती है, यानी 128 की वैल्यू है एक यवमध्य, तो 114 की अपेक्षा कितनी हानि होगी, हमें 114 माइनस करने हैं तो कितने माइनस करने पड़ेंगे, इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में, ये त्रैराशिक है जो हमने यहाँ लिखे थे, पहले लिखा था ना 128 = 1, तो 114 = how much, 114/128, तो भाग देने पर लब्ध इतना होता है, कितना, 57/64, इसको तीन गुनहानियों में से कम करने पर, तीन गुनहानियां कहो या 12 यवमध्य कहो, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग कम तीन गुनहानियां होती है उसका, ये तो एक्चुअल फिगर दी तीन गुनहानियों का, जो क्योंकि एक एक गुनहानी जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग है, और इसका जो कम करना है वो भी जगत श्रेणी का असंख्या, सब असंख्यात में ही है ना, इसलिए काल्पनिक संख्या में अपने को समझना आसान होता है, तो उसका प्रमाण 11.7/64, इससे यवमध्य के गुणित करने पर, इतने तो यवमध्य आए, टोटल जीवों की संख्या है, टोटल जीवों की संख्या कितनी है, 11.7/64 यवमध्य है, अब यहाँ यवो मध्य की वैल्यू हम लिख देंगे तो वो टोटल जीवों की संख्या आएगी। हमने अपने फिगर में काल्पनिक संख्या में 11.7/64 निकाला, एक्चुअल में 11.7/64 को कितना कहेंगे हम, तीन गुणहानियों में से कुछ कम, एक एक गुणहानि भी जगह श्रेणी के असंख्यात भाग है, उसमें जगह श्रेणी का कोई अलग असंख्यात भाग कम करना, उसकी वैल्यू से यवोमध्य को गुणित करना है। तो अभी 11.7/64 को 128 से गुणा करेंगे तो 1422 संख्या आएगी। अब यहां तक तो हमने कल देखा था, अब कल से थोड़ा समझ में आया ना। मूल में देखिए जो लिखा ना, उनकी जो संदृष्टि अपने ख्याल में नहीं आती। देखो क्योंकि 6.5 के लिए दिए 78 पेज पर उन्होंने कैसा लिखा है, 6 के नीचे एक द्वितीयांश लिखा, ये उनकी संदृष्टि अपने ख्याल में नहीं आ रही है। उन्होंने चार प्रकार से जो कहे तो उसको भी उन्होंने समझाया नहीं है, मूल में देखो इतना ही कह दिया है। हाँ, उन्होंने भी नहीं समझाया है क्योंकि संदृष्टि उनकी अपने ख्याल में नहीं आ रही है। अभी यहाँ जो दिखा है उन्होंने लिखा है उसको भी देखना पड़ेगा शायद, पखे ओ भागहारो चत्तारी, ये जो फुटनोट में दिया है ना 76 पेज पर, दौवतियम हेठुवरिम दलवारा दुगुणम उभयम अन्नोणम जीव जवे 1422 होति 32 चत्तारी तिन्नी कमिसो पण अड़ अठम तदोय 32 किंचूनति गुणहानि विभजित दवेदु जव मध्यम। यही जो उन्होंने हाँ वो श्रेणी वाली बात है, श्रेणी वाली पहला वाला, हाँ अभी आवार काल की बात है, परंतु उन्होंने क्षेत्र बताया वहां। देखो जव मध्य की गुणहानि के क्षेत्र को स्थापित करना, गुणहानि के क्षेत्र को वो समझ में नहीं आया, वो 40-40, 64-64 किस रीति से लिखा है वो पता नहीं चल रहा। हाँ इसका तो नहीं है, इतना ही कि देखो ऊपर 40-40 लिखा है, अब वही आगे के पेज में उन्होंने टोटल वैल्यू उसकी 80 आनी चाहिए इतनी लिए। हाँ, यानी ऊपर 80 है और नीचे 128 है। अब यहाँ ऊपर 80 है वो 64 और 16 में विभाजित किया, तो 8 64 8 लिए, नीचे 32 64 32 लिए, उसी को फिर 64 16 में किया, नीचे 64 64 लिखे, और चौथी पद्धति से 64 बीच में लिखे, बाजू में 8 8 लिखे, नीचे 64 64, ये अलग अलग पद्धति से उसको विभाजित करके दिखाया है, उसका एक्चुअल अर्थ ख्याल में नहीं आता। और वो 3.25 के बदले भी उन्होंने उसकी संदृष्टि इस तरह से लिखी है, 3/4 1/4। हाँ वो हमें 3/4 लगता है, वैसा नहीं है, 3 पूरा है और 1/4 है। अभी हम 79 पृष्ठ पर से देखेंगे जहां उदाहरण लिखा है ना, वहां से आगे बढ़ेंगे। उदाहरण यव मध्य का प्रमाण 128, गुणहानि का काल 4। गुणहानि में अर्थ होता है यहाँ योग स्थानों की बात चल रही है, एक गुणहानि में यानी एक एक योग स्थान में कितने जीवों की संख्या है, जहाँ जीवों की संख्या डबल होती है बढ़ते जाते हैं तो वहाँ हम कहेंगे गुणहानि, एक गुणहानि, या ऊपर की तरफ देखेंगे तो घटते जाएंगे। 128 में एक की हानि होती है तो 114 में कितनी होगी, इस प्रकार त्रैराशिक करने पर फल राशि 1 को इच्छा राशि 114 से गुणा करके उसमें प्रमाण राशि 128 का भाग देने पर 57/64 आते हैं। फिर इसे तीन गुणहानियों के काल 12 में से कम करने पर 11.7/64 आते हैं, यही जो अभी हमने देखा था ना, उसी को अंकों में बता रहे हैं। और इसको यवमध्य के प्रमाण 128 से गुणित करने पर कुल योग स्थान के जीवों का प्रमाण 1422 आता है। ये तो अपने अभी जो देखा है उसी की बात यहाँ उन्होंने अंकों में बताई है। अथवा अभी दूसरे प्रकार से बताएंगे, यवमध्य से अधस्तन गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि का जितना प्रमाण है। अपने अभी भाषा में हमने देखा था सेंटर में, सेंटर के योग स्थान में जीवों की संख्या ज्यादा है, हमने 128 मान ली है, नीचे की ओर कम होती जाती है, ऊपर की ओर भी कम होती जाती है। तो नीचे 3 गुणहानि है और ऊपर 5 गुणहानि है, तो नाना गुणहानि नीचे 3 है, अधस्तन लिखा ना, अधस्तन नाना गुणहानि 3 है, तो उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि 3 बार 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 8 हो जाएगी। उतने जघन्य योग स्थान के जीवों का उतने ने उतनी बार 8 बार जघन्य योग स्थान में हमने कितने जीव मान लिए थे, 16, 8 बार 16 है ना, क्या 128। देखो इसको मैं फिर पढ़ती हूँ, यवमध्य से अधस्तन यानी यवमध्य के नीचे वाले नाना गुणहानि शलाकाओं की जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि है यानी 8 जो है उसका जितना प्रमाण है उतने जघन्य योग स्थान के जीव कितने हुए, वो 128 हो गए। यदि एक यवमध्य प्राप्त होता है तो इसका अर्थ एक ख्याल में आ रही ना भाषा इसकी, यानी 128 का एक यवमध्य प्राप्त होता है तो कुछ कम डेढ़ गुणहानि का जितना प्रमाण है उतने जघन्य योग स्थान के जीवों का क्या प्रमाण होगा। इस प्रकार समान राशियों का अपनयन करके, अपनयन करने ने उसके माइनस करना है, यवमध्य की अधस्तन अन्योन्य अभ्यस्त राशि का कुछ कम डेढ़ गुणहानि में भाग देने पर असंख्यात यवमध्य आते हैं, उनकी संदृष्टि 11/16 है। कुछ कम उपरिम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का जितना प्रमाण, ऊपर के अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है, ऊपर 5 है ना नाना गुणा, 32 है, तो कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि है, उतने उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का यदि एक यवमध्य के बराबर प्रमाण प्राप्त होता है तो, ये आगे अंक लेके समझाएंगे हमें, कुछ कम डेढ़ गुणहानि का जितना प्रमाण है उतने उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का क्या प्रमाण प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का कुछ कम डेढ़ गुणहानि में भाग देने पर श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र यवमध्य प्राप्त होते हैं, उनकी संदृष्टि 13/64 है और दोनों के समान खंड करके मिलाने पर इतना होता है जो 57/64। अभी इसी को जो हमने पढ़ा है उसी को अंकों में बताएंगे। देखो क्या कहना चाहते हैं, अधस्तन अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8, उसमें यदि एक यवमध्य राशि है तो कुछ कम डेढ़ गुणहानि में कितनी यवमध्य राशि होगी। हमने गुणहानि कितनी के देखी, 4, तो डेढ़ गुणहानि कितनी होगी, 6, परंतु उसमें कुछ कम का प्रमाण उन्होंने 5.5 मान लिया, 5 पूर्णांक 1 द्वितीयांश यानी 11/2, 11 द्वितीयांश, तो उसका हम अभी त्रैराशिक लिखेंगे। देखो ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि है ना 3, तो उसमें एक यवमध्य, तो 11/2 में कितने यवमध्य, कुछ कम डेढ़ गुणानी में कितने होते हैं, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 11 द्वितीयांश गुणा 1 अष्टमांश, 11/16। ये वो मध्य आगे लिखना है। अब ऊपर की ओर बताएंगे, उपरितन प्रमाण के लिए ये उन्होंने अभी, ये अभी दूसरे पद्धति से वो गणित बता रहे। ये दूसरा अथवा लिखा है ना, ये हमने यव मध्य निकाले, पूरी टोटल राशि निकाली, मिल गए हमको, अभी ये अलग भाषा में ये बोल रहे हैं। एक गुणहानियों की भाषा में बताएंगे सब अभी। और उनके अवहार काल निकालेंगे हर एक के, प्रत्येक योग स्थान की भी निकालेंगे अभी अलग अलग प्रमाण। अब उपरितन के लिए ऊपर के जो गुणहानि है उसका भी प्रमाण निकालते हैं। उपरितन प्रमाण के लिए कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी है, अतः उपरितन 32 अन्योन्य अभ्यस्त राशि को गणित के दृष्टि से 128/5 माना गया, कुछ कम के लिए। कुछ कम में 5 × 10 = 25, ऐसे कुछ राशि मान ली उन्होंने काल्पनिक। यदि 128/5 राशि में एक यवमध्य राशि है, तो कुछ कम डेढ़ गुणहानी में कितनी यवमध्य राशि होगी। यहाँ कुछ कम डेढ़ गुणहानी का प्रमाण 5.15 लिया उन्होंने, तो वहां ऐसा ही लेना। फिर त्रैराशिक 128/5 में एक यवमध्य, अभी यहाँ 8 लिया था ना, तो गणित आसान हो इसलिए 128/5 में एक यवमध्य, इसलिए अभी डेढ़ का प्रमाण कितना लिया, डेढ़ गुणानी का 5.15 यानी 26/5, 26/5 में कितना, ये निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करके गुणा करना, 5/128 इसको गया, ये ऊपर 13 आ गए, नीचे से 64, 13/64 आ गए। तो पहले कितने निकले थे, 11/16, और ये 13/64, समभाग करना ना उनका, समच्छेद करना, 11 × 44, 44 + 13 57 आ गए, तो 57/64 ये जहाँ जो लिखा है ना यहाँ पर देखो, इसको 3 गुणहानियों में से कम करने पर ये कैसे निकाले, गुणहानि की भाषा में निकाल रहे सब। ये तो माइनस करनी इतनी फिगर, एक एक यवमध्य उसमें से कम किया ना उन्होंने, यवमध्य की भाषा में उन्होंने कहा है सब इसको, क्योंकि पहले डेढ़ लिया अभी डेढ़ ले रहे हैं, इसको 3 गुणहानियों में से कम करने पर 3 गुणहानियों का कुछ कम प्रमाण होता है उसकी संदृष्टि। 3 गुणहानियों को हमने 12 देखा था, उसमें 57/64 माइनस कर दिए जैसे हमने पहले भी किए थे, तो 711/64 आ गए। इससे यवमध्य को गुणित करने पर, क्योंकि हमने देखा था 3 गुणहानि प्रमाण तो यवमध्य है, तभी टोटल आएगी जीवों की संख्या, तो इसको यवमध्य को गुणित करने पर सर्वद्रव्य होता है उसकी संदृष्टि 1422 है। यवमध्य ने 128 × 711/764, तो 64 से 2 का भाग हो जाएगा तो 1422 आता है, 711 को डबल करना 1422 आए ना। इसे चूंकि कुछ कम 3 गुणहानियों से अपवर्तित करने पर यवमध्य आता है, अतः यवमध्य के प्रमाण से सर्व द्रव्य के अपहृत करने पर कुछ कम तीन गुणहानियों के काल से अपहृत होता है, यह सिद्ध होता है। यानी यवम टोटल जो संख्या है 1422, उसको हमने यवमध्य से 128 से भाग देंगे, हाँ तो कितना होता, कुछ कम तीन गुणहानि आती है। तो इसको अवहार काल निकालने के लिए हम उल्टा कहेंगे कि 1422 को कुछ कम तीन गुणहानियों से भाग देंगे तो यवमध्य आएगा, 128 आएंगे। तो उसकी भाषा कैसी आती है, देखो ये अतः के आगे पढ़ेंगे, नीचे से तीसरी लाइन में लास्ट में, अतः यवमध्य के प्रमाण से, यवमध्य का प्रमाण है 128, सर्व द्रव्य के अपहृत करने पर, यानी पूरे द्रव्य को भाग देने पर, वह कुछ कम तीन गुणहानियों के काल से अपहृत होता है, यह सिद्ध होता है। ये उसकी भाषा है। अब आगे ऐसी भाषा करेंगे वो, पहले गुणस्थान, ये पहले योगस्थान के जीव, आगे के योगस्थान के जीवों का प्रमाण कैसे निकालना उसको बताएंगे इसी भाषा में। जघन्य योगस्थान के जीवों के प्रमाण से, पहले हमने कौन से प्रमाण से देखे थे, यवमध्य के प्रमाण से देखा था, अब जघन्य योगस्थान के जीवों के प्रमाण से अपहृत करना है, यानी 16 से भाग देना है 1422 को। तो जघन्य योगस्थान के जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य का अपवर्तन करने पर वह असंख्यात गुणों हानियों के काल से अपवर्तित होता है। इन अदर लैंग्वेज अपनी भाषा में असंख्यात गुणहानि प्रमाण आएगा उसका। पहले हमने कितने देखा था, यवमध्य से भाग दिया था तो क्या कहा था, कुछ कम तीन गुणहानियों से अपहृत होता है। अब यहां जघन्य योगस्थान के जीवों के द्वारा भाग देंगे तो कितने का अपहृत होता है, कहेंगे हम असंख्यात गुणहानियों के काल से अपहृत होता है। यथा, अभी उसी को समझा रहे, एक यवमध्य में यदि यवमध्य की अधस्तन अन्योन्य अभ्यस्त राशि की संख्या प्रमाण, यानी 8 प्रमाण जघन्य योगस्थान के जीव पाए जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, एक यवमध्य की वैल्यू 128 है, 128 में जघन्य योगस्थान के जीव जो 16 है वो कितने प्रमाण में है, 16 16 16 कितने बार लेना पड़ेगा, 8 बार, तो उसका प्रमाण 8 आया। तो कुछ कम तीन गुणहानि प्रमाण यवमध्यों में क्या प्राप्त होगा, फिर त्रैराशिक। अब ये पहले वाला तो टेबल निकाल देंगे, एक यवमध्य में आठ, हाँ आठ संख्या प्रमाण है ना, जघन्य योगस्थान के जीव पाए जाते हैं तो कुछ कम तीन गुणहानि, अभी कुछ कम तीन गुणहानि का भी हमने प्रमाण निकाला था 711/64, उसमें कितने हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ इसमें 8 आ जाएंगे, नीचे यहाँ करेक्शन करना है, पढ़ती हूँ मैं आगे। तो कुछ कम, देखो ये पेंसिल से उसके आगे उसकी वैल्यू लिखते जाना, यथा से फिर दोबारा पढ़ेंगे सेकंड लाइन से, यथा एक यवमध्य में, यवमध्य की वैल्यू है 128, उसके टॉप पर लिखना वहां पर, यदि यवमध्य की अधस्तन अन्योन्य अभ्यस्त राशि ने 8 आठ संख्या प्रमाण जघन्य योगस्थान के जीव ने 16 पाए जाते हैं तो कुछ कम तीन गुणहानि प्रमाण, यानी 711/64 प्रमाण यवमध्यों में क्या प्राप्त होगा। हमने देखा ना, एक यव मध्य में 8, तो 711 बटे 64 यव मध्यों में कितने? इस प्रकार एक यव मध्य दूसरे यव मध्य के समान होने से इन दोनों गुणकों को निकालकर अन्योन्य अभ्यस्त राशि से कुछ कम 3 गुणहानियों को गुणित करने पर असंख्यात गुणहानियां उत्पन्न होती हैं। यथार्थ में कितनी संख्या आएगी उसकी? असंख्यात गुणहानियां। और अपनी वैल्यू कितनी होगी? उनकी संदृष्टि, इस सब के ऊपर बिंदी लगाना। उनकी संदृष्टि, ये बीच में 8 लिखना रह गया, 711 बटे 64 मल्टीप्लाइड में 8 लिखा नहीं उन्होंने, वो लिखना इज इक्वल टू 711 बटे 8, बीच का 8 वैल्यू नहीं लिखेंगे तो ये संख्या आएगी ही नहीं। इसका सब द्रव्य में भाग देने पर, क्योंकि हमने क्या किया है, हाँ, जघन्य योग स्थान के जीवों से सब द्रव्यों को भाग दिया था तो ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू से सब जीवों को भाग देंगे तो जघन्य योग स्थान की संख्या आएगी। इसका सब द्रव्य में भाग देने पर जघन्य योग स्थानवर्ती जीव होते हैं 712, ये उसको भाग देना है 711 बटे 8 से, तो 16 वैल्यू आ जाएगी उसकी। अब दूसरे योगस्थान के जीवों की संख्या निकालनी है। द्वितीय योगस्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य को अपहृत करने पर, यानी 1422 को अभी हमको 32 से, सॉरी 20 से, 20 से भाग देना है, बराबर है 20 से, 32 ने 20, वह असंख्यात गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। अभी उसको समझाते हैं। पहले क्या बोला था, असंख्यात गुणहानि काल से अपहृत होता है। अभी असंख्यात ही है परंतु स्थानांतर, वो अन्य कुछ उसकी वैल्यू बदल जाएगी। यथा, अभी इसको समझाते हैं, जघन्य योग स्थान के जीवों के भागहार को, ये भागहार है ने अभी जो ऊपर हमने निकाला था वो, उसको कहते हैं जघन्य योग स्थान के जीवों का भागहार। का अर्थ क्या होता है कि कौन से भागहार से टोटल 1422 को भाग देने पर जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या आई थी, उसको कहते हैं जघन्य योग स्थान के जीवों का भागहार। कितना आया था अभी हमने निकाला, 711 बटे 8, यानी उसको हम टोटल करेंगे तो 88.7 अष्टमोश, उसी की वैल्यू। अब क्या करना है उसको, उसको विरलित करना है, विरलन करना है ना, एक 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 लिख देना। 711 बटे 8 की वैल्यू कितनी आती है, 88.64, फिर 71 हो गए, 88.64 कितने रह गए, 7 रहे ना, 7 बटे 8 इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको विरलन करना है ना, कितना लिखना पड़ेगा, 88 बार और फिर 7 अष्टमोंश लिखेंगे, एक के बदले 7 अष्टमोंश लिखेंगे, ये इसका विरलन हुआ। विरलित कर सब द्रव्य को समखंड कर देने पर क्या आएगा, 1422 इसमें समान डिवाइड करना है, 16 आएगी, क्योंकि हम ये 16 का ही भागहार है ना, जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या उसी से निकलती है, समझ में। 1422 को इस संख्या से भाग देंगे तो 16 आए थे, तो इसको विरलित करके उस पर पूरा द्रव्य समखंड करके देंगे तो हर एक के ऊपर 16 आएंगे, और अंत में उसका 16 का 7 अष्टमांश जो कुछ है उतना भाग उसमें अंत में आएगा, ये तो बात यहाँ तक समझ में आई, अब आगे पढ़ेंगे। फिर देखो यथा के आगे, जघन्य योग स्थान के जीवों के भागहार को, ये भागहार की वैल्यू यहाँ लिख देना 711/8, इसको विरलित कर सब द्रव्य को समखंड कर देने पर, सब द्रव्य है 1422, विरलन एक एक के प्रति जघन्य योग स्थान का द्रव्य प्राप्त होता है, ये है 16। इतने तो समझ में आई ना बात। हाँ, फिर इससे द्वितीय निषेक, चूंकि एक प्रक्षेप अधिक है, दूसरा योग स्थान में कितना देखे थे हमने वैल्यू 20, चार ज्यादा थे ना, एक प्रक्षेप की वैल्यू है 4, एक प्रक्षेप से ज्यादा है, अतः उसके साथ जघन्य योग स्थान का, ये योग स्थान बराबर लिख लेना, वहां प्रिंट नहीं हुआ है, उसके साथ जघन्य योग स्थान का द्रव्य लाने के लिए भागहार को कम करते हैं। क्या करना पड़ेगा, अभी 1422 को 711/8 से भाग दिया था, यानी 88.78 से भाग दिया था तो 16 आए थे, बराबर। अभी हमको 20 आना चाहिए, हमको फाइनल रिजल्ट 20 आना चाहिए, संख्या बड़ी आनी चाहिए, तो भागहार को कम करना पड़ेगा। हाँ, तो वो पूरे टोटल इसमें से कितना कम करना, उसकी टोटल निकालनी पड़ेगी ना, तभी उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये भागहार कम करना पड़े, इतना तो ख्याल में आया, तो कितना कम करना उसको देखते हैं। यथा इस विरलन के नीचे एक गुणहानि को विरलित कर, अभी नीचे हम ऊपर लिखेंगे, उन्होंने लिखा तो नीचे है, हम यहाँ एक गुणहानि को विरलित करेंगे। अभी एक गुणहानि का प्रमाण कितना है, 4, 4 को विरलित किया, एक गुणहानि को विरलित कर उस पर जघन्य योग स्थान के द्रव्य को समखंड कर देने पर, ये जो जघन्य योग स्थान 16 है उसको समखंड करने, 16 को इसमें विभाजित करेंगे तो 4-4 लिखना पड़ेगा। विरलन रूप के प्रति एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि हमें हर एक 16 में एक एक 4-4 मिलाना है ना। अभी हमने 88 बार 7 अष्टमांश है वहां, 16-16 लिखे हैं, तो हमको हर एक 16 में 4-4 मिलाने हैं, तभी हमको 20 प्राप्त होंगे। ये जो 28 बार ये जो सारे लिखे हैं, उसके बदले हमने 16 के बदले में हम हर जगह हमको 20 करने हैं, तो उसमें 4-4 ऐड करने हैं, तो जब 4 बार 4-4 ऐड कर दिए तो यहाँ का 16 की वैल्यू समाप्त हो गई। 5वें बार का 16 नहीं रहा, क्योंकि हमको वो 4 कहाँ से लाएंगे हम, बराबर। तो 4 बार करने में, ये 5 बार में एक की हानि हो गई, हाँ एक की हानि हो गई ना, यानी 5 बार 16 थे तो उसमें से 1 बार का 16 मिटाकर हमने 4 में 4-4 ऐड कर दिए, 20 कर दिए, 4 में तो 20-20 कर दिए। अभी आगे के 5 में से 1 16 और मिटेगा, तब 4 की वैल्यू 20-20 हो जाएगी, और आगे 5 में से और 1 मिटा देंगे तो उसकी वैल्यू 20-20 हो जाएगी। अभी इसको पढ़ते देखो, हाँ तो हाँ, ऐसे 88 में से कितने बार कम करना पड़ेगा उसको भी सोचना है ना। हाँ, देखो देखो, अभी यहाँ देखते हैं, ये यथा से फिर पढ़ते हैं। इस विरलन के नीचे एक गुणहानि को विरलित कर उस पर जघन्य योग स्थान के द्रव्य को समखंड कर देने पर विरलन रूप के प्रति एक एक प्रक्षेप का, यानी 4 का प्रमाण प्राप्त होता है। एक गुणहानि को विरलित करें, 4 को विरलित किया था हमने। हाँ, जघन्य स्थान के द्रव्य को यानी 16 को समखंड कर देने पर 4 का प्राप्त होता है। उनको ग्रहण कर उपरिम विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त हुए जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों में मिला देने पर यानी 16 में मिला देने पर द्वितीय योग स्थानवर्ती जीवों का प्रमाण यानी 20 प्रमाण होता है और एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाकर एक रूप की हानि प्राप्त होती है। अधस्तन विरलन 4 है उसमें एक रूप अधिक यानी 5 जाकर एक की हानि हो जाती है। 5 स्थान जाने पर एक की हानि होती है, है ना? एक अधिक अधस्तन विरलन वो करने की जरूरत नहीं है, विरलन हमका 4 था तो एक अधिक अधस्तन विरलन 5 हो जाते हैं। यानी 5 स्थान जाने पर एक रूप की हानि होती है। इस प्रकार उपरिम विरलन राशि को प्राप्त हुए सब जीवों के द्वितीय योग स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण को प्राप्त होने तक बार बार करना चाहिए। 88 बार वो विरलन था ना, तो हर एक में 20-20 करते जाएंगे, हम 16 को 20 करते जाएंगे तो हमारा अब ऐसा त्रैराशिक करेंगे हम। हाँ, 5 बार जाकर एक की हानि होती है तो 88 पूर्णांक यानी हमने उसको कितना देखा था, 711 पूर्णांक बटे 8, 711 बटे 8, इतने स्थान में कितने की हानि होगी उसका उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 711 यानी इसके बटे एक पंचमांश यानी 711 बटे 40 आ जाएंगे, इतने की हानि होगी। तो मूल में स्थान कितने थे, 711 बटे 8, और उसमें से माइनस कितना करना है, 711 बटे 40। 711 के बदले x ले लो ना, x बटे 8 में से x बटे 40 कम करना है। ये 5 हो जाए ना, 5 x में से एक x कम कर दो, 4 x बटे 40 यानी x बटे 10, बराबर यानी 711 बटे 10 आएगी। अभी इन्होंने वो पूरा फिर गुणा किया फिर भाग दिया, उसके झमेले में हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे तो वो झमेला ख्याल में आएगा। हाँ देखो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये समच्छेद करना है तो ये इसको 5 गुणा करना पड़ेगा तो नीचे भी 40 हो जाएंगे, ये 8 है ना तो 5 एक्स में से एक एक्स गया तो 4 एक्स डिवाइडेड बाय 40। हाँ एक एक्स इज इक्वल टू 10 नहीं, एक्स बटे 10। इसका अर्थ लगते लगते मुझे कल 2 घंटे लगे। ये एक पहले ही गणित का, फिर आगे का गणित आसान है। ये त्रैराशि ख्याल में आता है तो आगे की बात ख्याल में आती है। देखो अब यहाँ कहेंगे, अब यहाँ कम हुए अंकों का प्रमाण कहते हैं, कितने अंक कम हुए उसको निकालेंगे। यथा एक अधिक गुणहानि प्रमाण स्थान जाकर यानी 5 स्थान जाकर, अपनी भाषा में लिखो तो अच्छा है, पांच स्थान जाकर उपरिम विरलन में यदि एक रूप की हानि प्राप्त होती, एक रूप यानी एक संख्या, ऐसा लिख सकते, 5 स्थान जाकर एक की हानि तो कुछ कम तिगुणी अन्योन्य अभ्यस्त राशि प्रमाण उपरिम गुणहानि विरलन में। ये इतना सब हमने ये सब निकाला था तो कितना निकाला था, वो 711 बटे 8 निकाला था। इस सब की वैल्यू कितनी होती है, क्या लिखा, तिगुणी अन्य अन्य अभ्यस्त राशि प्रमाण उपरिम गुणहानि विरलन, इसी का अर्थ होता है 711/8। कितने परिहीन रूप प्राप्त होंगे, कितने परिहीन रूप यानी कितना कम करना है, इस प्रकार रूपाधिक गुणहानि से उपरिम विरलन को खंडित कर लब्ध को उसी में से कम कर देने पर, पहले जो त्रैराशिक हमने निकाला था 5 में एक कम, तो 711/8 में कितने कम हो गए, तो 711/10 की वैल्यू आ जाएगी, 40 की आएगी, 10 नहीं 40, अभी उसको अभी हमको कम करना है उसमें से, तो 40 की 711/40 की कटौती हो जाएगी, वो 711/8 में से वो घटा देना है हमको। तो उसी में से कम कर देना, तो उसकी संदृष्टि 711/10 आती है, यानी उसको हम पूर्णांक में कहेंगे तो 71.1। पहले कितने थे, 88.7 कुछ था ना ऐसा, 7/8, उसमें से इतने कम हो गए। अभी इसी का विशेषार्थ आशय यह है कि द्वितीय योग स्थान के जीवों की संख्या 20 है, इसका कुल योग स्थानवर्ती जीव राशि 1422 में भाग देने पर 711/10 आते हैं, ये डायरेक्ट निकाला इसी रीति है, परंतु हमें पहले योग स्थान की अपेक्षा से निकालना है ना, भागाहार कैसे कम होते जाते हैं आगे आगे, जहाँ 16 संख्या है त्यहाँ भागाहार बड़ा है, जो अभी हमने निकाला, तो आगे आगे वो कम होते जाएगा। यही कारण है इस द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण लाने के लिए इतना अवहार का प्रमाण बतलाया है, जो संख्या आती ना उसी को कहते हैं अवहार, इस जो अवहार है उससे भाग देने पर उन जीवों की संख्या आती है। हाँ, अवहार यानी भागहार, इस भागहार के इस फिक्स सब जीवों की संख्या को भाग देने पर दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या आती है। प्रथम योग स्थान के जीवों का प्रमाण लाने के लिए जो 711/8 अवहार का प्रमाण बतलाया है उसमें से 711/40 घटाने पर दूसरे योग स्थान की संख्या लाने के लिए भागहार का प्रमाण होता है यहाँ अवहार के बदले भागहार लिखा ना, यही बात है, वो भागहार कहो या अवहार कहो, प्रथम योग स्थान की जीव राशि लाने के लिए भागहार 711/8, सब जीव राशि 1422, गुणहानि आयाम 4, प्रक्षेप 4 और प्रथम योग स्थान की राशि 16, ये उन्होंने फिर बात बताने के लिए दोबारा पूरा संख्या में बता रहे हैं। अभी अधस्तन विरलन उन्होंने पहले ही लिख दिया, नीचे से पढ़ो, अभी सेकंड लाइन में 1111=4, ये गुणहानि आयाम है ना, उसको विरलन कर दिया था, और हर एक के ऊपर प्रथम योगस्थान की जो जीव राशि जघन्य योगस्थान उसके 16 उसमें बांट दिए थे, तो 4-4-4 आए थे। अब जो उपरितन विरलन जो हमने पहले देखा था उसको भी कैसे पढ़ना, सबसे नीचे की लाइन 1111 लिखा है ना, तो 1111 कितनी बार लिखना है, 4 बार नहीं, वो 88 बार, 88.7 बार, ये तो उन्होंने शॉर्ट में 4 बार लिख दिया। एक्चुअली बीच में ये बीच में डॉट डॉट चाहिए, उन्होंने वो साइड में 2 अलग लिखे ना, वो इन कंटिन्यूएशन में चाहिए थे। ऐसे हाँ, ये ऊपर के विरलन के साथ बताने के लिए उसमें 4-4 ऐड किए, तो 5वां वहां से गया, कम हो गया, परंतु ये कंटिन्यूस पहले ऐसे समझना कि नीचे जो वन 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 है वो 88 बार है और 7 अष्टमांश बार, और उसके ऊपर भी 16 16 16 उतनी ही बार आ जाएंगे। अब उसमें से चार के बाद का एक 16 मिटा दिया और उसके चार 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 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो जो गैप दिखे ना बीच में, तो वहां का 16 उन्होंने निकाल कर वो चार 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 प्रक्षेप कर दिए उसमें। यहां 5 स्थान जाकर एक की हानि हुई है, इसलिए वो पांचवा स्थान नहीं दिखा है। इसलिए 711/8 स्थान जाने पर 711/40 की हानि होगी, अतः 711/8 - 711/40 = 3555। ये हमने 5x कहे थे ना, वहाँ 5x - 1x किया था, वो माइनस का साइन है, इज इक्वल हो गया -711/40 इज इक्वल टू, वो 711/14 हुआ है, उसको 10 करना पड़ेगा उसको। पीछे है क्या करेक्शन? नहीं ना, पीछे नहीं है ना। हाँ मैंने कर दिया था ऐसे ही, मैंने बोला पीछे है क्या क्या। ये द्वितीय स्थान की संख्या लाने के लिए ये भागहार है, इसी को अवहार काल भी कहेंगे, अवहार भी कहेंगे। इतनी बात ख्याल में आई ना, अभी ये जो अभी इसी पद्धति से आगे तक जाएंगे हम, आगे और भी उनको हमको चार चार और मिलाने पड़ेंगे तीसरा स्थान निकालने के लिए। तो तीसरा स्थान निकालने के लिए 16 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 8, दो प्रक्षेप मिलाने ना, 8 मिलाने पड़े। अभी वो तृतीय स्थान की बात अब करेंगे। तृतीय योगस्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर असंख्यात गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है, यानी उसका ये भागहार कहेंगे। कितना होता है? असंख्यात गुणहानि स्थानांतर कहा उसको, यथा यानी असंख्यात असंख्यात गुणहानि के ही प्रमाण आ रहा है अभी। पहले 16 से भाग दिया तो भी असंख्यात गुणहानि आई थी, और आगे आगे भी असंख्यात गुणहानि स्थानांतर कहे। प्रमाण तो असंख्यात है, उसकी वैल्यू अभी घट रही है ना, भागाहार की वैल्यू घट रही है, तो संख्या जीवों की अधिक आएगी। यथा पूर्व विरलन के नीचे गुणहानि के द्वितीय भाग का विरलन कर, अभी पूर्व विरलन जो हमने देखा था 88 बार किया था, उसमें 16-16 लिखे थे, अभी उसके नीचे अधसन विरलन करना है। कितने का करना, क्या पढ़ा अभी आपने? फिर पढ़ना, देखो पूर्व विरलन के नीचे, पूर्व विरलन है वो 88 बार किया हमने और उसमें 16-16 दिए, अभी अधसन विरलन में क्या करना? गुणहानि के द्वितीय भाग यानी कितने? हाँ, दो का विरलन करना है, दो ही का विरलन करना और उसमें 16 देना है, तो 8-8 आए गए ना, क्योंकि हमें पहले 4 ही देना था, इसलिए हमने 4 यानी पूरे गुणहानि में विरलन किया था। अभी हम दो बार ही विरलन करेंगे तो 8-8 आएंगे, तो इसमें हमने 8-8 मिलाए तो तीसरा 16 मिट जाएगा, क्योंकि हमको 16 अभी हमकी हमारी वैल्यू 16 और 8 = 24 आनी है, हमको 8 मिलाना है, 8 मिलाने के लिए एक 16 मिटाना है, तो दो बार में ही उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो तीसरा नष्ट हो गया, तो 3 में 1 की हानि हो जाएगी। हाँ, 2 8 है सिर्फ ना, तो हाँ 5 में से 4 किया ना, क्योंकि एक की हानि की। देखो देखो हमें कितने चाहिए, अभी हमें कितने मिलाने हैं? 8 मिलाने हैं, 8 मिलाने हैं, तो 16 में 8 कितनी बार हो जाएंगे? 2 ही बार में मिल जाएंगे, तो दो बार के 16 में 8-8 मिला दिए तो तीसरे बार का 16 मिट गया। हमको हम कितना ऐड करते उस पर देखना है, तो हर तीन में से एक एक नेस्ट हो जाएगा। अब वहां पढ़ने के पहले हम निकालेंगे ना थोड़ा, तो पहले जैसे हमने हर तीन में एक की हानि हो जाएगी, तो अपने कितने हमने किए थे 711/8 में कितनी हानि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 711/ कितनी हो जाएगी 24। आठ त्रिक 24 हो जाएगी ना, इसको माइनस करना है। अभी हम अभी ये किसमें से माइनस करना है 711/ सफेद लू क्या, 711/8 माइनस 711/24, ये तीन करना, तीन गुना करना है, तीन एक में से एक एक गया तो दो एक रहेगी ना, 1422/24 यानी 711/12 अब यहाँ पढ़ेंगे। देखो इस फिर यथा से पढ़ेंगे सेकंड लाइन। पूर्व विरलन के नीचे, पूर्व विरलन था अपना 711/8, गुणहानि के द्वितीय भाग का विरलन कर, इन्हें दो का विरलन कर, उपरिम विरलन के प्रथम अंक के प्रति प्राप्त जघन्य योग स्थानवर्ती जीव निषेक को यानी 16 को समखंड कर देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति दो दो प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। दो प्रक्षेप करते वैल्यू है 8। वहां अधस्तन विरलन में एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को ऊपर के विरलन में द्वितीय अंक के प्रति प्राप्त राशि के ऊपर देने पर तृतीय निषेक का प्रमाण होता है। तृतीय निषेक का अर्थ क्या है 24। देखो फिर इसकी वैल्यू हम देखते, अधस्तन विरलन में एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को यानी 8 को बराबर, ऊपर के विरलन में द्वितीय अंक के प्रति प्राप्त राशि के ऊपर देने पर यानी 16 में देने पर तृतीय निषेक का प्रमाण यानी 24 प्राप्त होता है बराबर। इस प्रकार अधस्तन विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशियों के क्रम से प्रविष्ट हो जाने पर एक अंक की हानि होती है। अधस्तन विरलन के सब अंकों के प्रति यानी अधस्तन विरलन में दो ही अंक है, उसमें 8 और 8 हमने डिवाइड किए थे, वो ऊपर हम मिला दिए तो एक की हानि हो गई। इस प्रकार पुनः पुनः करने पर एक एक अंक की हानि होती है ऐसा मानकर उन हीन अंकों के लाने की विधि कहते हैं। हमने पहले देखा था 711/, देखो यहाँ बात यह चल रही है सब जो जीव स्थान है उसमें संख्या 1422 टोटल जीवों की, और पहले जीव स्थान में संख्या है 16, तो 16 को इसको भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आती है, दो का भाग देंगे 711/8। तो इसको हमने पहले विरलन किया था 711/8 की वैल्यू 88.78 आती है, तो इसको विरलन किया हमने एक 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 88 बार लिखा 88.78 बार, तो उसके पूरे जीव उसमें डिवाइड करेंगे तो 16-16 हो जाएंगे क्योंकि 16 का ही हमने एक एक भाग किया था। अभी हमको ये तो पहले जीव स्थान की बात, पहले योग स्थान की बात है, दूसरे योग स्थान की भी बात हमने निकाली थी, अब तीसरे योग स्थान की संख्या निकालने के लिए उसके भागहार की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी संख्या को 1422 को भाग देने पर हमें 24 मिलेंगे, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना कि अभी इस 16 में हमको 8 मिलाएंगे तो हमको 24 प्राप्त होगा, तो हर एक में हमको 8-8 की एडिशन करनी पड़ेगी। भाई यहाँ देखना, आपके लिए फिर दोबारा समझा रहे, हर एक में हमको 8-8 वैल्यू करनी है, तो 88 बार हमने 16-16 लिखे थे, तो दो बार 16 लिखेंगे तो तीसरे बार क्या 16 जो है उसको 8-8 में हमने डिवाइड करके यहाँ लिख दिया तो ये मिट गया, फिर और तीन में से और एक मिट गया और तीन में से एक मिट गया, इस तरह से हर तीन में से एक मिटता है, तो ये नहीं जो 711 बटे 8 में से कितने मिटेंगे, तो इसकी वैल्यू 711 बटे 24 हो जाएगी। ये त्रैराशिक है ना, सिंपल इतने मिटेंगे तो उसको कम करना पड़ेगा हमको, तो 711 बटे 8 में से 711 बटे 24 माइनस करेंगे, तो उसका समच्छेद करना है, यहाँ 8 है और यहाँ 24 है, ये अभी हमने निकाला ना, तीन स्थान में से एक स्थान कम हुआ, तो 711 बटे 8 हमने ऐसे 88 लिखे थे, हाँ ये त्रैराशिक में ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, 8 × 24 हो जाएगी, तो इस इतने तो हानि हो जाएगी, तो कितने में हानि हो जाएगी, 711 बटे 8 में से 711 बटे 24 माइनस करेंगे, 711 के बदले आप x ले लो, x डिवाइडेड बाय 8, यानी अभी 8 × 3 करना पड़ेगा, छेद समान करना है ना, 3x माइनस x, हाँ 711 बटे 12 आ जाएंगे, इतने स्थान रह जाएंगे अभी, यानी 711 बटे 12 से 1422 को डिवाइड करेंगे तो तीसरे योग स्थान की संख्या आएगी जो 24 आती है, ऐसे ही सब जगह यही पद्धति है। देखो हमने यहाँ तक पढ़ा था चौथे में कम हो कठिन हो जाएगा, हाँ अभी देखेंगे ना, देख एक एक अंक की हानि होती है, ऐसा मानकर मिला हीन अंकों के लाने की विधि कहते हैं, बीच में है देखो नीचे से छठी सातवीं लाइन, छठी में एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण, अधस्तन विरलन हमने दो ही का ही गया था क्योंकि 16 को हमें दो में डिवाइड किया था तो 8-8 आए थे, तो दो प्रमाण स्थान जाकर यदि उपरन विरलन में एक अंक की हानि प्राप्त होती है, यानी तीन स्थान जाने पर एक की हानि जो अभी हमने देखा था, तो पूरे उपरिम विरलन कितना है, पूरा 711 बटे 8, कितने अंकों की अ के ऊपर बिंदी लगाना, कितने अंकों की हानि प्राप्त होगी, इस प्रकार एक अधिक गुणहानि के द्वितीय भाग से, एक अधिक गुणहानि का द्वितीय भाग, गुणहानि हमने 4 की मानी है, गुणहानि का द्वितीय भाग होता है 2, एक अधिक गुणहानि का द्वितीय भाग यानी 3, अन्योन्य अभ्यस्त राशि प्रमाण कुछ कम 3 गुणहानियों के अपवर्तित करने पर, ये इतने बड़े बड़े नाम दिए ना तो डर लगता है पल्लोपम का असंख्यात्व भाग आता है उसको उसी विपरीत विरलन में से कम करने पर तृतीय निषेक का भागहार होता है, तृतीय निषेक यानी यहाँ तृतीय योग स्थान कहना है, तृतीय योग स्थान का भागहार की उसका अर्थ ऐसा होता है जिस भागहार से टोटल जीव संख्या को डिवाइड करने पर तृतीय योग स्थान के जीवों की संख्या आती है उसको कहते हैं तृतीय निषेक का भागहार। अब इसकी थोड़ी अपनी भाषा समझ में आई है तो डर नहीं लगेगा है? उसकी यह संदृष्टि है 711 बटे 12, यह अभी हमने निकाला था, इसी का विशेषार्थ यहाँ तृतीय योग स्थान के जीवों का भागहार प्राप्त करना है। साधारणतः यह भागहार 1422 में 24 का भाग देने से प्राप्त हो जाता है, पर प्रथम योग स्थान के भागहार में से ये डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं, परंतु हमें पहला भागहार प्राप्त है उसमें से कितना कम करना है, किस प्रक्रिया से कितना कम करने पर यह भागहार होगा, यही विधि यहाँ बतलाई गई है। जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या 16 और तृतीय योग स्थान के जीवों की संख्या 24 है, इसलिए जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या लाने के लिए 1422 संख्या का जो भागहार बतलाया है, हमने देखा था ना भागहार कितना था, 711/8, उससे यह भागहार एक तिहाई कम हो जाएगा। एक तिहाई क्यों? क्योंकि तीन में एक एक कम हो रहा है ना, हर तीन स्थानों में एक कम हो रहा है। इसी से मूल में एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाने पर ऊपरी विरलन में एक स्थान की हानि बतलाई गई है। तीन स्थान जाने पर एक की हानि, तो 711/8 स्थान जाने पर कितने की हानि? इस प्रकार ये हानि आ जाएगी 711/24, और उसको मूल में से कम करना है ना, 711/8 माइनस 711/24 इज इक्वल टू 711/12 आते हैं। इस प्रकार तृतीय स्थान का भागहार 711/12 प्राप्त होता है। इसका भाग 422 में देने पर, सॉरी 1422 में देने पर योग स्थान के तृतीय स्थान के जीवों की संख्या 24 लब्ध आती है। एक शब्दों का अर्थ तो ख्याल में आता है ना, हाँ, किसी स्थान का भागहार का अर्थ होता है ऐसे भागहार जिससे 1422 को भाग देने पर उस स्थान की संख्या आएगी। ये यही मेथड हमने पहले देखी थी, आपको याद होगा दवला के तीसरे या चौथे पुस्तक में, वहां वो निशेखार भाग, ये निशेखार नहीं भागहार निकाले थे, अलग अलग गुणस्थानों की संख्या निकालते समय, उस गुणस्थानों के जीवों का प्रमाण निकालते समय ऐसे ही विरलन वगैरह करके संख्या निकाली थी वहां। उसको कहते उसका अवहार काल कितना है, अवहार काल कितना है, ऐसा कहा था। अभी चतुर्थ निषेक की बात निकालनी थी ना अपनी, हाँ देखो, पुनः तीन अधिक पूर्व भागहार के तृतीय भाग से उपरिम विरलन को अपवर्तित कर लब्ध को उसी में से कम करने पर चतुर्थ निषेक का भागहार होता है। अभी पूर्व भागहार जो है उसका तृतीय भाग, तीन अधिक पूर्व भागहार के तृतीय भाग से उपरिम विरलन को अपवर्तित कर, यही जो है 711/8 को अपवर्तित कर लब्ध को उसी में से कम करने पर चतुर्थ निषेक का भागहार आता है, उसकी संदृष्टि 711/14 है। इस प्रकार उत्तरोत्तर हीन किए जाने वाले अंक पल्ल्योपम के असंख्यात भाग मात्र होकर जाते हुए कितने स्थान ऊपर जाकर पल्ल्योपम के प्रमाण को प्राप्त करते हैं, ऐसा पूछने पर कहते हैं कुछ कम तिगुणे यवमध्य और अधस्थन अन्योन्य अभ्यस्त राशि से अपवर्तित पल्ल्योपम मात्र स्थानों से कुछ अधिक स्थान ऊपर चढ़ने पर घटाए जाने वाले अंकों का प्रमाण पल्ल्योपम होता है। अभी हमने कितना कितना घटाया था, 711/अमुक तमुक इतना इतना है ना, उसका इतना भाग उतना इतना भाग ऐसा घटाया था, तो कहते हैं कि घटाए जाने वाले अंकों का प्रमाण पल्ल्य होता है, वो कितने ही स्थान जाने कर। यहाँ संदृष्टि स्थापित कर शिष्यों को उष करना, शिष्यों को प्रतिबोध कराना चाहिए, यहां उपयुक्त गाथा। पल्ल्योपम घटाने वाली राशि पल्ले होनी चाहिए। अभी हम कितना घटाते हैं, तीन स्थान जाने पर एक घटाया, तो इतने स्थानों में 711 बटे 8 में कितने घटाए, ऐसे लिया था ना उसमें। तो देखो पहले में पहले हमने कितने घटाए थे, पहले से दूसरे स्थान में घटाने जाने वाली संख्या कितनी थी देखते जरा। उसमें तो घटाए थे पर एक्चुअल संख्या कितनी घटाई थी देखो। अपनी भाषा में नहीं, एक्चुअल भाषा में हाँ, हर बार उतना उतना कम करते थे। उत्तरोत्तर हीन किए जाने वाले अंक पल्लोपम के असंख्यात विभाग मात्र। हाँ, परंतु असंख्यात भाग कम होते 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 पल्ले तक आई ना संख्या, हीन होने वाली संख्या। उसमें से कम करने हैं ना, वो ये जो हमने देखा था ना। कम होने वाली संख्या की वैल्यू भी अलग हो रही है। हर बार पल्ले का संख्या तो भाग ही नहीं कम हो रहा है। देखो पहले से दूसरे में कितना कम हुआ, अपनी भाषा में बोलो, वो पल्ले को भूल जाओ। पहले भागहार से दूसरा भागहार कितना कम था, पहला भागहार कितना था 711 बटे 8 था, दूसरे बार 711 बटे 12, 14 इस तरह से हो रहा है ना। तो घटा हमने यहाँ कितना घटाया था, 711 बटे 40 घटाया था। इसमें कितना घटाया था, 711 बटे 24 घटाया था। यहाँ कितना घटाया, तो इसकी वैल्यू अलग अलग हो रही है ना। 711 बटे पहले कितना घटाया, 40 घटाया, और यहाँ 711 बटे 24 घटाया, घटाए जाने वाली वैल्यू। तो इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है ना, घटाए जाने वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये बड़ी 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 होगी ना, तो पहले पल्ले का असंख्या तो भाग घटाया, बाद में भी पल्ले का असंख्या तो भाग, मगर वो बड़ा था। ऐसे घटाते 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 पल्ले तक घटाते गए ऐसा। घटाए जाने वाली वैल्यू भी अलग अलग है, नॉट द सेम। यही वो उन्होंने कहा, यहाँ संदृष्टि स्थापित कर शिष्यों को बताना चाहिए ने। इस तरह से इसी अंकों के द्वारा, इसी संदृष्टि के द्वारा समझ में आएगा कि पहले इतना घटाया, फिर इतना घटाया, फिर इतना घटाया, घटाने जाने वाली वैल्यू हाँ बढ़ती जा रही है। यानी पूरा जैसे 88 जो थी ना, हमको अपूर्णांक में ख्याल में नहीं आता, हमने पहले 88.7 देखा था, उसमें से कुछ घटाया तो 71 कुछ बना, यानी घटा कितना, इतना घटा, बाद में और घटा, बाद में और घटा, मूल में से घटा रहे ना हमने। तो यानी इसकी वैल्यू घट रही है, उसमें से घटाने वाली वैल्यू बढ़ रही है, टोटल वाली वैल्यू घटेगी भागहार की। 88 के बदले 71 हुई, फिर और कम हुई, और कम हुई, मान लेते कहीं जाकर उसकी वैल्यू अभी मान लेते 50 रह गए, तो उसमें 38 समथिंग घट गए ना। तो ऐसा जब तक पल्ले घट जाएगा, कितने स्थान के बाद पल्ले घटेगा, ऐसा उनका कहना है। हाँ देखो, कुछ कम तिगुण यो मध्य और अधस्तन अन्योन्य अभ्यस्त राशि से अपवर्तित पल्लोपम मात्र स्थानों से कुछ अधिक स्थान ऊपर, यानी इतने स्थान जाने पर घटाए जाने वाले अंकों का प्रमाण पल्ले जितना होता है, ये बात बताना चाहते हैं। हाँ, इतने स्थान जाने पर वो पल्ले जितनी संख्या भागार में से घटेगी, ये बात बताना चाहते हैं। ये उपयुक्त गाथा यहाँ ऊपर लिखिए, देखो। अवहारेणो वट्टिद अवहरणिजम्मिजम् हवेलत्थम् तेनो वट्टिदमिट्ठम् अहिये लद्धिये अत्थानम्। भागहार का भज्जमान राशि में भाग देने पर जो लब्ध आता है, उससे इष्ट को भाजित करने पर लब्धि के अधिक अधिक स्थान प्राप्त होते हैं। ये जो भागहार आएगा, उससे भज्जमान राशि को भाग देंगे तो जो बात आती है, उससे इष्ट को भाजित करने पर लब्धि के अधिक अधिक स्थान प्राप्त होते हैं। ने उस भागहार से हम जो टोटल जीवों की संख्या को भाग देंगे तो हमें उस योग स्थान के जीवों की संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार जाकर द्वितीय दुगुणी वृद्धि के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों के भागार के द्वितीय भाग से अपहृत होता है। क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने दूसरा योग स्थान, तीसरा योग स्थान, चौथा योग स्थान ऐसे देखे, योग स्थान। अब कहते हैं जब ये संख्या दुगुनी हो जाएगी, यानी 32 हो जाएगी, तो भागहार में क्या फर्क पड़ेगा? तो वही कहते हैं, भागहार भी द्वितीय भाग से अपहृत होता है। हाँ, आधा हो जाएगा, क्योंकि जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों की अपेक्षा इस स्थान के जीव दुगुने पाए जाते हैं। स्थान के जीव दुगुने हैं तो भागार आधा हो जाएगा। इसकी संदृष्टि अभी वहां हमने 711/8 देखा था, अब यह 711/16 हो जाएगी। अब उसके अनंतर योग स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर असंख्यात गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। इसको भी असंख्यात गुणहानि स्थानांतर ही कहा है, फिर भी वो अपने योग्य जो कुछ उसका प्रमाण होगा। विशेष इतना है, इससे अनंतर पूर्व के अवहार काल से चाहिए। इस समय का अवहार काल विशेषहीन है। जैसे हमने देखा था ना, ये भागार कम होता चला जाता है। जैसे हमने देखा था 16 को जो हमने 711/8, फिर 711/10 हुआ, हाँ, फिर 12 हुआ, 14 हुआ, इस तरह यहाँ भी अब 16 तक आए हैं ना, तो 16 के आगे वो भी और फिर घटता जाएगा। विशेष का प्रमाण क्या है? तो पल्लोपम का असंख्यात अभाग है, उसकी संदृष्टि 711/20 है। 711/16 से अभी 711/20 पर आ गए, क्योंकि यहाँ बढ़ने का क्रम कितना है? पहले तो 4 से बढ़ता, अभी ये तो 8 से बढ़ रहा है। हाँ 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 दूसरी गुणहानि है ना अभी, इसलिए द्वितीय गुणहानि के तृतीय निषेक के भागार की संदृष्टि 711/24 है। 16 से 20 हुई, 20 से 24 हुई, वहां दो दो से नीचे का अंक बढ़ता था, अभी 4-4 से बढ़ रहे हैं नीचे का अंक छेद में। चतुर्थ निषेक के भागार की संदृष्टि 711/28 है। अब तीसरी गुणहानि की बात करेंगे। तीसरे गुणहानि के प्रथम निषेक का भागार प्रथम गुणहानि संबंधी प्रत्येक निषेक के भागार के चतुर्थ भाग प्रमाण है, क्योंकि गुणहानि तृतीय पन तो डबल का डबल हुआ ना। हाँ, तो दूसरी गुणहानि में दो गुणी संख्या हुई तो भागहार दूसरा भाग हुआ। 711/8 थे तो 711/16 हुए थे, अभी दूसरे गुणानि से तीसरे गुणानि में और डबल हो गई संख्या, 64 हो गई। तो यहाँ भागार में भी और हाँ छेद में दुगुना हो जाएगा, उससे उतना भाग चतुर्थ भाग प्रमाण है, क्योंकि वहाँ लब्ध से यहाँ का लब्ध, लब्ध यानी तृतीय निषेक जो है, तृतीय गुणानि का प्रथम निषेक, चौगुणा पाया जाता है, 16 चौक 64 हो गई ना, तो भागार में भी हाँ उसके चौथा भाग हो जाएगा, भागार चौथा भाग हो जाएगा, यानी भागार में 711/32 हो जाएगी। इस प्रकार असंख्यात गुणहानियां भागार होकर जाती हुई किस स्थान में जघन्य परिता संख्यात मात्र होती है, ये असंख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि कहा ना हमने, तो किस स्थान पर मिनिमम असंख्यात होगी, जघन्य परिता संख्यात का अर्थ क्या है, मिनिमम असंख्यात, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, यव मध्य से अधस्तन कुछ कम त्रिगुण अभ्यंतर राशि से राशि के जितने अर्धच्छेद जघन्य परिता संख्यात के, स के ऊपर बिंदी लगाना, देखो 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 आवली में जघन्य युक्ता संख्यात आ गए। अभी आवली के आगे पल्ले कितना लंबा है, आवली में ही जघन्य युक्ता संख्यात है, तो आगे पल्ले देखो, टोटल वैल्यू असंख्यात ये कम हो रहा है ना, भागहार कम, भागहार कम की ओर चल रहा है, कितना माइनस करना उसकी वैल्यू मत देखना, उसको हमने पल्ले तक देखा था पहले, अभी भागहार कम हो रहा है टोटल, तो आगे आगे जीवों की संख्या ज्यादा होगी। अभी तक तो हमने असंख्यात असंख्यात गुणहानि ऐसे देखी थी, तभी वो असंख्यात का प्रमाण मिनिमम असंख्यात कब होगा उसकी बात चल रही है। इसको कल पढ़ेंगे यहां से।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो प्रेरणा।